एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने जा रहे हैं, लेस और तमारा पाइने की पुलित्जर पुरस्कार विजेता किताब द डेड आर अराइजिंग, द लाइफ ऑफ मैल्कम एक्स।
जी हाँ, ये किताब कोई मामूली जीवनी नहीं है। इसे लिखने में मतलब लगभग 30 साल का शोध लगा है और ये मैल्कम एक्स के जीवन पर शायद सबसे ज्यादा विस्तृत और कह सकते हैं तथ्यात्मक काम है।
बिल्कुल, और ये किताब मैल्कम एक्स से जुड़े कई मिथकों को भी तोड़ती है, एक ज्यादा मानवीय, एक जटिल तस्वीर पेश करती है।
सही कहा, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो लगातार बदल रहा था, विकसित हो रहा था।
और वो इंसान थे मैल्कम लिटिल, जो बाद में मैल्कम एक्स बने और फिर अंत में अलहज मलिक अल शब्बाज। एक विवादास्पद तो थे, लेकिन 20वीं सदी के अमेरिका ने एक बेहद प्रभावशाली मुस्लिम मंत्री, मानवाधिकार कार्यकर्ता,
और एक ऐसी आवाज जिसने अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय और नस्ली न्याय पर जो बहस होती है उसे हमेशा के लिए बदल दिया।
उनकी कहानी आज क्यों जरूरी है? मतलब आज के समय में हम उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं?
देखिए, उनकी कहानी आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। एक तो उनका अपना सफर ही अविश्वसनीय है। कैसे कोई एक मुश्किल बचपन से, अपराध की दुनिया से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानव अधिकारों की इतनी बुलंद आवाज बन सकता है, और खासकर आज के माहौल में जब हम फिर से नस्लीय तनाव देख रहे हैं, पहचान के सवाल उठ रहे हैं, सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं, तो मैल्कम एक्स की यात्रा, उनके विचारों का विकास, ये सब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।
तो आज हमारा मकसद यही है कि मैल्कम एक्स के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके विचारों के बदलते स्वरूप और उनकी जो स्थायी विरासत है उसे समझें, और इसका आधार होगी पाइने की ये गहरी शोध वाली किताब। तो चलिए शुरुआत उनके शुरुआती सालों से करते हैं।
बिल्कुल, मैल्कम लिटिल का जन्म हुआ 19 मई 1925 को ओमाहा, नेब्रास्का में। उनके पिता अर्ल लिटिल एक बैप्टिस्ट उपदेशक थे और वो मार्कस गार्वी के बड़े समर्थक थे।
मार्कस गार्वी यानी वो अश्वेत आत्मनिर्भरता और अश्वेत गौरव के विचार।
हाँ, वही तो। ये विचार मतलब उनके घर के माहौल का एक हिस्सा थे, लेकिन उनका बचपन वो त्रासदियों से भरा हुआ था, बहुत मुश्किल था।
हाँ, मैंने पढ़ा है बचपन में ही उन्होंने श्वेत वर्चस्ववादी हिंसा का वो भयानक रूप देखा, उनके घर को चला दिया गया था।
और सिर्फ 6 साल के थे वो जब उनके पिता की मौत हो गई, रहस्यमयी परिस्थितियों में। आधिकारिक तौर पर तो उसे दुर्घटना कहा गया,
लेकिन परिवार को शक था कि हत्या है, शायद ब्लैक लीजन नाम के किसी नस्लवादी समूह ने की थी।
जी, परिवार का यही मानना था। और सोचिए, इस घटना ने उस परिवार पर क्या असर डाला होगा, वो पूरी तरह से बिखर गया। आर्थिक तंगी तो थी ही, माँ लुइस लिटिल पर इतना भावनात्मक बोझ पड़ा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
हाँ, और 8 बच्चे वो अलग अलग पालक घरों में मतलब फॉस्टर होम्स में भेज दिए गए। ये सारे अनुभव, पिता की मौत, माँ का इस तरह चले जाना, परिवार का टूटना, इन सब ने मैल्कम के मन में बहुत छोटी उम्र में ही श्वेत व्यवस्था के प्रति एक गहरा अविश्वास, एक गुस्सा भर दिया था।
स्कूल में तो वो काफी होशियार थे, सुना है क्लास प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन फिर वो एक घटना हुई उनके शिक्षक वाली।
हाँ, मेसन मिशिगन में, जहाँ वो ज्यादातर श्वेत बच्चों के साथ पढ़ते थे। वो बुद्धिमान थे, महत्वाकांक्षी भी, लेकिन उनके एक श्वेत शिक्षक मिस्टर ऑस्ट्रोव्स्की ने उनसे कहा कि एक वकील बनना एक नीग्रो के लिए यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है।
उफ, ये तो सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, इसने तो जैसे उनके सपनों पर पानी फेर दिया होगा।
बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह से श्वेत समाज की हदों का प्रतीक बन गया। ये एहसास कि तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे सपने मायने नहीं रखते सिर्फ तुम्हारी चमड़ी के रंग की वजह से, इसने उन्हें औपचारिक शिक्षा से जैसे दूरी कर दिया।
और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया।
हाँ, और वो चले गए बोस्टन, फिर न्यूयॉर्क के हार्लेम, और वहां की सड़कों पर जिसे वो खुद असली शिक्षा कहते थे वो शुरू हुई। वो बन गए डिट्रॉइट रेड, हसलर, छोटे मोटे अपराध, ड्रग्स।
ये एक तरह का विद्रोह था उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें नकारा था।
हाँ, कह सकते हैं ये उस समाज की उम्मीदों को ठुकराने का उनका अपना तरीका था। वो थोड़े शातिर भी थे, अपराध की दुनिया में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, चोरी की योजनाएं वगैरह बनाते थे।
और फिर इसी रास्ते पर चलते हुए वो जेल पहुंच गए 1946 में, चोरी के इल्जाम में।
जी, 10 साल की सजा हुई, और जेल का ये दौर ये उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ साबित हुआ।
कैसे, जेल में ऐसा क्या हुआ?
देखिए, जेल उनके लिए एक भट्टी की तरह थी। शुरुआत में तो वो बहुत गुस्सैल थे, ईश्वर की निंदा करते थे, कैदी उन्हें शैतान बुलाने लगे थे।
शैतान?
हाँ, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात हुई जॉन एल्टन बैम्बरी, जिन्हें बिम्बी कहा जाता था, जैसे कुछ स्वशिक्षित कैदियों से। बिम्बी ने उन्हें पढ़ने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
और कहा जाता है कि उन्होंने जेल में पूरी की पूरी डिक्शनरी हाथ से लिख डाली।
हाँ, ये बात मशहूर है। ये उनकी आत्मशिक्षा की, खुद को गढ़ने की शुरुआत थी। वो घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे।
और यहीं उनका परिचय नेशन ऑफ इस्लाम से भी हुआ।
जी, उनके भाई बहनों के जरिए, खासकर रेजिनल्ड के जरिए, उन्होंने उन्हें नेशन ऑफ इस्लाम यानी NOI के बारे में बताया। ये एलिजा मोहम्मद का अश्वेत राष्ट्रवादी और धार्मिक संगठन था।
और NOI की शिक्षाएं मैल्कम को अपनी सी लगी।
बिल्कुल, एलिजा मोहम्मद सिखाते थे कि श्वेत लोग शैतान हैं और अश्वेत लोग असल में दिव्य है, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। ये बातें मैल्कम के अपने अनुभवों से, उनके गुस्से से, श्वेत समाज से मिले जख्मों से सीधे जुड़ गईं। उन्हें अपने जीवन की कड़वाहट को समझने का, उसे एक मतलब देने का एक फ्रेमवर्क मिल गया।
तो जब वो 1952 में जेल से बाहर आए पैरोल पर, वो मैल्कम लिटिल नहीं थे, वो एक बदले हुए इंसान थे।
पूरी तरह से। उन्होंने अपना सरनेम लिटिल छोड़ दिया। वो इसे गुलामी का प्रतीक मानते थे और उसकी जगह अपनाया एक्स, जो उनके खोए हुए अफ्रीकी पूर्वजों, उनकी अनजानी पहचान का प्रतीक था।
मैल्कम एक्स।
मैल्कम एक्स। वो अब NOI के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और बहुत तेजी से संगठन में आगे बढ़े। उनकी भाषण देने की कला असाधारण थी, बुद्धि तेज थी, संगठनात्मक क्षमता गजब की थी।
हाँ, वो पहले बोस्टन, फिर फिलाडेल्फिया और फिर हालिम के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर Temple No. 7 के मंत्री बने।
और जल्द ही वो एलिजा मोहम्मद के बाद NOI के सबसे जाने माने चेहरे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए।
वो एक करिश्माई वक्ता थे, इसमें कोई शक नहीं। उनका संदेश अश्वेत गौरव, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा, श्वेत वर्चस्व की तीखी आलोचना, ये हजारों लोगों को, खासकर शहरों में रहने वाले अश्वेत नौजवानों को अपनी तरफ खींच रहा था।
उन्होंने मीडिया का भी बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया। TV बहसों में बेबाकी से अपनी बात रखते थे और वो उस समय के मुख्य धारा के नागरिक अधिकार आंदोलन, खासकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अहिंसा की रणनीति के बहुत कड़े आलोचक थे।
लेकिन फिर 1963-44 आते आते NOI के साथ उनके रिश्ते में दरार आने लगी। ऐसा क्यों हुआ?
इसके कई कारण थे। एक तो उन्हें पता चला कि एलिजा मोहम्मद, जिन्हें वो अपना आदर्श मानते थे, वो खुद संगठन के कड़े नैतिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उनके कई विवाहेतर संबंध थे जिनसे बच्चे भी हुए थे। ये मैल्कम के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था।
आदर्श का टूट जाना।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ मैल्कम की अपनी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। वो एलिजा मोहम्मद से भी ज्यादा पहचाने जाने लगे थे। इससे संगठन के अंदर ही कुछ लोगों में ईर्ष्या और असुरक्षा पैदा होने लगी थी।
तो फिर राष्ट्रपति केनेडी की हत्या पर उनकी वो विवादित टिप्पणी आ गई, चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, मतलब अमेरिका ने जो हिंसा बोई है वो अब घर लौट रही है।
हाँ, उस टिप्पणी ने एलिजा मोहम्मद को बहाना दे दिया। उन्होंने मैल्कम को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, कहा कि वो संगठन के लिए नहीं बोल सकते।
और ये निलंबन कभी खत्म नहीं हुआ?
नहीं। मार्च 1964 में मैल्कम एक्स ने आधिकारिक तौर पर नेशन ऑफ इस्लाम छोड़ दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक कदम था, क्योंकि NOI से अलग होने वालों को अक्सर धमकियां मिलती थीं, हमले भी होते थे।
उन्होंने फिर अपने संगठन बनाए?
जी, उन्होंने एक धार्मिक संगठन बनाया, मुस्लिम मस्जिद इंक, MMI, और एक ज्यादा राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफ्रो अमेरिकन यूनिटी, OAU। इसका मॉडल अफ्रीकी एकता संगठन पर आधारित था। अब उनका लक्ष्य सिर्फ नागरिक अधिकार नहीं, बल्कि मानवाधिकार था।
और यहीं से उनके विचारों में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, खासकर 1964 में उनकी हज यात्रा के बाद।
हाँ, ये एक और निर्णायक मोड़ था। वो मक्का गए हज करने, और वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी पूरी सोच बदल दी।
क्या देखा उन्होंने मक्का में?
उन्होंने देखा कि दुनिया भर से आए मुसलमान, गोरे, काले, भूरे, पीले, हर रंग, हर नस्ल के लोग एक साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, पूरी बराबरी के साथ इबादत कर रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं।
इसने उनके NOI वाले विचारों को चुनौती दी होगी कि सारे गोरे लोग शैतान हैं।
जबरदस्त चुनौती दी। उन्हें एहसास हुआ कि इस्लाम सिर्फ अश्वेतों का धर्म नहीं है और इंसानियत त्वचा के रंग से बड़ी है, गोरे लोग स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते, इस अनुभव ने उनके नस्लीय अलगाववाद के विचारों को तोड़ दिया।
तो उन्होंने फिर पारंपरिक रूढ़ीवादी सुन्नी इस्लाम अपना लिया।
हाँ, और अपना नाम भी बदला, अल हज मलिक अल शुबाज। अल हज यानी वो जिसने हज किया है।
और अब उनका नजरिया क्या बन रहा था?
अब वो अश्वेत राष्ट्रवाद को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संघर्ष से जोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि अमेरिका में अश्वेतों का संघर्ष अलग थलग नहीं है, ये अफ्रीका एशिया में चल रहे उपनिवेश विरोधी संघर्षों और वैश्विक श्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई का ही हिस्सा है।
उनका लक्ष्य अब अमेरिका के नस्लीय भेदभाव के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना था, मानवाधिकार हनन के तौर पर।
बिल्कुल, उनकी सोच अब ज्यादा परिपक्व, ज्यादा वैश्विक हो गई थी। वो सिस्टम की गहरी समझ दिखा रहे थे।
लेकिन जैसा आपने कहा, ये रास्ता खतरों से भरा था। NOI उन्हें गद्दार मान रहा था, FBI, CIA जैसी सरकारी एजेंसियां भी उन पर कड़ी नजर रखे हुए थीं।
हाँ, खतरा चारों तरफ से था। और आखिरकार 21 फरवरी 1965 को न्यूयॉर्क के ऑडियोबुन बॉलरूम में जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए,
उनकी हत्या कर दी गई।
हाँ, 3 हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। वो सिर्फ 39 साल के थे। पाइनी की किताब इशारा करती है कि हत्यारे NOI की नेवार्क मस्जिद से जुड़े थे, और शायद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी इस मामले में पूरी सच्चाई सामने नहीं आने दी।
एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा।
बहुत गहरा। उन्होंने अमेरिका में नस्ल पर होने वाली बहस का रुख बदल दिया। अश्वेत समुदाय में आत्मसम्मान और पहचान की एक नई लहर पैदा की। संघर्ष को एक अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य दिया। आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया। उनका असर बाद के ब्लैक पावर आंदोलन और पैन अफ्रीकन आंदोलनों पर साफ दिखता है।
उनकी इस पूरी यात्रा को देखें तो उनके मूल दर्शन, उनके मूल्यों को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों पर भी टिके रहे?
हाँ, मुझे लगता है कुछ बुनियादी बातें थीं, जैसे सभी इंसानों की एक अंतर्निहित गरिमा होती है, इस पर उनका विश्वास, उत्पीड़न के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार, इसे वो जरूरी मानते थे, और ये कि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है,
और उनका लगातार विकसित होना, ये भी तो एक मूल्य था।
शायद सबसे महत्वपूर्ण, वो कभी रुके नहीं, सीखते रहे, बदलते रहे। उनकी सोच में 3 साफ चरण दिखते हैं, शुरुआती आपराधिक मानसिकता, फिर NOI का नस्ली अलगाववाद, और अंत में रूढ़ीवादी इस्लाम और सार्वभौमिक मानवाधिकारों का नजरिया।
उनका जोर हमेशा व्यवस्था को बदलने पर रहा, ना कि सिर्फ उसमें शामिल हो जाने पर। ये बात उन्हें शायद उस दौर के कई दूसरे नेताओं से अलग करती है।
निश्चित रूप से, वो सिर्फ बराबरी का हिस्सा नहीं मांग रहे थे, वो उस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे थे जो असमानता पर बनी थी। उनका अंतर्राष्ट्रीय नजरिया भी खास था। अमेरिका के अश्वेतों की लड़ाई को दुनिया भर के दबे कुचले लोगों की लड़ाई से जोड़ना।
और उनकी प्रेरणा क्या थी? किस चीज ने उन्हें आगे बढ़ाया? क्या ये वक्त के साथ बदली?
हाँ, बदली। शुरुआत में शायद व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने की इच्छा थी, श्वेत सत्ता के खिलाफ एक कच्चा गुस्सा था। NOI में आने के बाद ये गुस्सा एक संगठित रूप ले लेता है, एक धार्मिक और राजनीतिक मिशन बन जाता है, अपने लोगों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुलामी से आजाद कराना। उनका वो मशहूर नारा, बाय एनी मीन्स नेसेसरी, किसी भी जरूरी तरीके से, वो इसी दौर का है। लेकिन हज के बाद उनकी प्रेरणा और गहरी और व्यापक हो जाती है। अब लक्ष्य सिर्फ अश्वेतों की आजादी नहीं, बल्कि सभी इंसानों के लिए सच्ची गरिमा और मानवाधिकार हासिल करना बन जाता है।
उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना कैसे किया? जेल की सजा, लगातार जान का खतरा।
उनका तरीका था दिमाग का इस्तेमाल करना, बौद्धिक रूप से जुड़ना, रणनीति बनाना और अपनी गरिमा कभी नहीं खोना। वो समस्याओं की जड़ तक जाते थे, उन्हें समझते थे और फिर उनका सामना करने के लिए तैयारी करते थे। जैसे जेल को उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया,
हर चुनौती को सीखने का मौका बना लिया।
बिल्कुल, उन्होंने मुश्किलों को अपने विकास का ईंधन बनाया।
उनके जीवन में इतने सारे मोड़ आए, लेकिन अगर हमें 3 सबसे निर्णायक, सबसे अहम मोड़ों को चुनना हो तो वो कौन से होंगे?
पहला तो बिना किसी शक के उनके पिता अर्ल लिटिल की 1931 में हुई मौत। जैसा हमने पहले बात की, इसने सिर्फ परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि मैल्कम को बहुत छोटी उम्र में ये कड़वा सच दिखा दिया कि अमेरिका में एक अश्वेत की जिंदगी कितनी खतरनाक और असुरक्षित है। इसने उनके मन में श्वेत व्यवस्था के प्रति शक और गुस्से के बीज बो दिए थे।
हाँ, ये तो बहुत गहरा असर डालने वाली घटना थी। दूसरा मोड़?
दूसरा, मेरे ख्याल से वो जेल का दौर था, 1948 से 1952 तक। वो उनका वैचारिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म था, जहां डेट्रॉइट रेड खत्म हुआ और मैल्कम एक्स का जन्म हुआ।
अच्छा।
हाँ, वहीं उन्हें आत्मशिक्षा की ताकत का पता चला और एनओआई की विचारधारा ने उन्हें एक नई पहचान, एक नया मकसद दिया। उनके भविष्य के नेतृत्व की नींव वहीं पड़ी।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा और शायद सबसे नाटकीय, वो था 1964 में मक्का की हज यात्रा। उस एक अनुभव ने उनके नस्लीय दृष्टिकोण को, उनकी पूरी दुनिया को देखने के नजरिए को पलट दिया।
मक्का ने सब बदल दिया।
हाँ, सभी नस्लों के इंसानों को भाईचारे में रहते देख एनओआई की जो अलगाववादी सोच थी वो उनके लिए नाकाफी हो गए। वो समझ गए कि मसला सिर्फ काले गोरे का नहीं बल्कि इंसानियत का है। यहीं से वो अश्वेत राष्ट्रवाद को सार्वभौमिक मानवाधिकारों के एक बड़े कैनवस पर देखने लगे।
मैल्कम एक्स के जीवन से आज के समय में क्या सबक लिए जा सकते हैं? उनकी कहानी आज सुनने वालों के लिए क्यों मायने रखती है?
देखिए, कई गहरे सबक हैं। सबसे पहला तो शायद यही कि इंसान में लगातार सीखने और बदलने की कितनी क्षमता होती है। मैल्कम की पूरी जिंदगी बौद्धिक और नैतिक विकास का एक जीता जागता उदाहरण है। वो कभी एक जगह अटके नहीं रहे, अपनी सोच पर सवाल उठाने से कभी डरे नहीं।
और आत्मशिक्षा की ताकत, औपचारिक शिक्षा के दरवाजे बंद होने के बाद भी उन्होंने खुद को ज्ञान से कैसे लैस किया?
बिल्कुल। और ये भी कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ बोलने से नहीं आता, वो व्यक्तिगत ईमानदारी से, अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखने की हिम्मत से आता है। उनकी विश्वसनीयता इसी बात से बढ़ी कि वो बदले, उन्होंने अपनी पुरानी सोच को छोड़ा जब उन्हें लगा कि वो गलत थी।
उन्होंने लोकप्रियता की चिंता किए बिना सच कहने का साहस दिखाया।
हाँ, जो अक्सर मुश्किल होता है। और आज के समय में जब हम दुनिया भर में नस्लीय तनाव, ध्रुवीकरण, पहचान की राजनीति, सामाजिक अन्याय के मुद्दे देख रहे हैं तो उनकी यात्रा बहुत प्रासंगिक हो जाती है।
कैसे?
एक व्यक्ति का सफर जो चरमपंथी विचारों से शुरू होकर एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा समावेशी नजरिए तक पहुँचता है, ये अपने आप में एक उम्मीद जगाता है। प्रणालीगत नस्लवाद यानी व्यवस्था में बसी हुई नाइंसाफी और वैश्विक अन्याय पर उनका जो विश्लेषण था वो आज भी कितना सटीक लगता है।
जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों के संदर्भ में।
हाँ, बिल्कुल। या दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी कहानी हमें इतिहास से सीखने की याद दिलाती है। और ये भी कि बदलाव मुमकिन है, हमारे अंदर भी और समाज में भी। ये व्यक्तिगत परिवर्तन और सामाजिक न्याय दोनों के लिए एक प्रेरणा है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में वो तीन मुख्य बातें कौन सी होंगी जो सुनने वालों को मैल्कम एक्स और इस किताब से खास तौर पर याद रखनी चाहिए? सबसे पहले एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
शायद वो गहरा अकेलापन और खतरा जो मैल्कम एक्स ने एनओआई छोड़ने के बाद महसूस किया होगा, ये हमें याद दिलाता है कि उसूलों पर चलने की, सच के साथ खड़े होने की एक मानवीय कीमत होती है। नैतिक साहस के साथ अक्सर अकेलापन आता है। या एक दूसरा नजरिया ये भी है जो कुछ विश्लेषक कहते हैं कि उनके जीवन की सबसे प्रबल भावना नफरत नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए एक गहरा, एक घायल किस्म का प्यार था जो उनके बचपन के भयानक अनुभवों से पैदा हुआ था।
ये सोचने वाली बात है। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
मैल्कम का सफर एक नस्लीय अलगाववादी से मानवाधिकारों के पैरोकार बनने तक का ये दिखाता है कि असली बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि आप नए सबूतों, नए अनुभवों के सामने अपनी पुरानी जमी हुई धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हों। कभी कभी वैचारिक कट्टरता हमारी समझ और असरदार होने की राह में रुकावट बन जाती है। या इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि मैल्कम एक्स का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि ज्ञान की प्यास थी, एक लाइब्रेरी कार्ड था। जेल की कोठरी से विश्व मंच तक का उनका सफर ज्ञान की एक कभी न खत्म होने वाली खोज थी।
सही है, ज्ञान की ताकत। और आखिर में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि।
शायद ये कि असली और गहरा बदलाव तभी आता है जब हम खुद के बारे में, अपनी मान्यताओं के बारे में कुछ असहज करने वाले सच का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। मैल्कम का जीवन दिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन अपने मूल्यों को छोड़ देने से नहीं आता बल्कि ये समझने से आता है कि उन मूल्यों का असली मतलब क्या है, उनकी सच्ची जरूरत क्या है। या एक और तरीके से कहें तो हम सब अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं और हमारे पास किसी भी पल अपनी कहानी को बदलने, उसे फिर से लिखने की ताकत होती है। मैल्कम एक समय याद दिलाते हैं कि पहचान हमें बनी बनाई नहीं मिलती, उसे सच्चाई की खोज में हिम्मत के साथ गढ़ना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर दोबारा भी गढ़ना पड़ता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।